ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की दो दिन की यात्रा पर आज वॉशिंगटन पहुंचे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने नागरिकों के हितों और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड ने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी और सुश्री गबार्ड के बीच चर्चा में द्विपक्षीय खुफिया सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी रणनीति, साइबर सुरक्षा, उभरते खतरों और रणनीतिक खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। श्री मोदी का अमरीकी प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं और व्यापार जगत के दिग्गजों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने आज नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून में धाराओं की संख्या कम की गई है और इसे सरल बनाया गया है ताकि आम नागरिक आसानी से समझ सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित विधेयक में धाराओं की संख्या 536 है, जबकि आयकर अधिनियम 1961 में 819 धाराएं थीं।
Year after year, many more sections were added. And as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. 4,000 amendments have been made from 1961. And all those are being reduced now.
वित्त मंत्री ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में किसी भी क्षेत्र में आवंटन में कटौती नहीं की गई है। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सुश्री सीतारमण ने कहा कि बजट का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के अलावा विकास को गति देना है। मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा दावा किए गए प्रभावी पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबद्ध संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी विरोध के बीच पेश की गई। दिन में 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में रिपोर्ट पेश की। शोर शराबे के बीच केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस रिपोर्ट में असहमति नोट को शामिल करने की अनुमति देते हैं, जिसकी विपक्षी सदस्य मांग कर रहे हैं, तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उधर राज्यसभा में आज सुबह सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी ने विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संयुक्त समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सदन में पेश की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि संयुक्त बैठकों में विपक्षी सदस्यों द्वारा असहमति विचारों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट, कार्यवाही और असहमति नोट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। इस बीच लोकसभा को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% उपस्थिति दर्ज की गई। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में 177 सदस्यों ने 17 घंटे से अधिक समय तक हिस्सा लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना उपायों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में अग्रणी बनकर उभरा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इस सफल मॉडल को दुनिया ने अपनाने में रुचि दिखाई है। जर्मनी के म्यूनिख शहर के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के पास एक कार ने लोगों के एक समूह को टक्कर मार दी। इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं, घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। कार के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। ये घटना प्रतिष्ठित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले हुई है। चीन के छिंगताओ में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के ग्रुप डी के दूसरे मैच में आज भारत को दक्षिण कोरिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। कड़े मुकाबले में कोरियाई टीम ने 3-2 से जीत दर्ज की। ग्रुप डी से दोनों ही टीमें पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।